ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय आशा दीदी जी। हिंदुस्तान के दिल से अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचने का सफर करके आप सबसे, बाप दादा से तो मिलेंगे ही, लेकिन आप सबसे भी मिलन मनाने दीदी पहुंची हुई हैं। दीदी का करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत करें। कहते हैं माँ मदालसा ने बच्चों को जन्म देने के बाद शुद्धोषी और बुद्धोषी का मंत्र दिया था। आपके भी जनक और जननी ज्ञान में पहले से थे। रोज बाबा की मुरली का श्रवण करना, भले ही बच्चों को पीछे छोड़ के आ जाते थे, उन बच्चों में आशा दीदी भी थी। आप शुरू से बहुत मेधावी रहीं, आप जहां भी रहीं आपने एक नया गुलशन बनाया। पढ़ रहे थे तब भी आपने इतिहास रचा, एक के बाद एक आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और जब यज्ञ में आई तो आपने यज्ञ में भी इतिहास रचा। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक पढ़ने वाले और एक पढ़ाने वाले। तो इतिहास पढ़ने वालों में नहीं, इतिहास रचने वालों में आप हम सब के रहनुमा हैं। हमारा ये गौरव है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी बहनों की जो आज पंक्तियां लगती हैं, इनकी ट्रेनिंग में आपकी प्रमुख भूमिका रही। ब्रह्मा कुमारी बनाने में आपकी भूमिका रही। इतना ही नहीं कि आप हमारी रहनुमा हैं, वरन आपने देश के रहनुमाओं को बाबा का घर और दर दिखाया। जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ज्ञानी जल सिंह से लेकर आगे तक, एक एक को मधुबन तक पहुंचाने का प्रयास किया और लाई भी, सफल हुई। राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी को भी यहां तक पहुंचाने का श्रेय आपको। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब बाबा के डाक टिकट की चर्चा हो रही थी, अथक प्रयास करके उस समय डाक टिकट निकलवाया आपने, बड़े गौरव की बात थी संस्था के लिए। और फिर उसके बाद आपने और भी डाक टिकटों की संरचना करवाई, प्रशासन के रहनुमाओं को, प्रशासकों को भी। आप प्रशासक प्रभाग की प्रमुख हैं। और इतना ही नहीं, आज वर्तमान में आप जो आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट, उसकी भी निर्देशिका हैं। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे मैनेजमेंट कमेटी की आप सम्मानित सदस्य हैं। अगर आपके लिए अभी भी बहुत कुछ है कहने को, इतना ही कह के मैं वाणी को विराम दूंगी। जहां के नूर का हम नूर लेकर आए हैं, भगवान के घर का ज्ञान गुण की शक्ति भरपूर लेकर आए हैं, जिसने बनाए हैं दुनिया में नक्शे कदम अपने, ऐसी बेनजीर शख्सियत लेकर आए हैं आदरणीय आशा दीदी। आज हमको अचल अडोल बनाएंगे, कैसे बन सकते हैं ये सिखाएंगी।
ओम शांति। जो कुछ भी सुनते हैं वो सुनते हुए प्यारे बाबा की यादें और मजबूत होती जाती हैं। यदि हम सब अपने अपने जीवन को देखें तो हमें बाबा ने कहां से कहां विश्व मंच पर पहुंचा दिया है। न मन न चित्त ना इतनी बुद्धि थी, ना इतनी कला थी, ना ही इतनी योग्यता थी, लेकिन बाबा ने हम सबको अपनी माला का मणका बनाकर गायन और पूजन योग्य बना दिया कि मेरा आखिरी मणका भी बहुत वैल्यूबल है। माताएं जिनको संसार ने रिजेक्ट किया, पांव की जुत्ती कहा, उनको बाबा ने अपने मस्तक का कोई नूर बना दिया और बाबा भोलानाथ बाबा कहता है मैं अपना काम भोले बच्चों से ही कराता हूं। भोले बच्चों से जो ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते हैं, लेकिन बाबा पर विश्वास और निश्चय रखते हैं। तो ऐसी माताओं कन्याओं के द्वारा बाबा स्वर्ग के गेट खुलवाता है, चाबी उनके हाथ में दी है। माताओं के हाथ में चाबी है स्वर्ग की। इतना बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, वह श्रृंगार बाबा चाहते हैं वो सदा कायम रहे। मेरे बच्चों की स्थिति अचल हो, अडोल हो और एक रस हो, ये सहयोग मैं बच्चों से चाहता हूं। किन बच्चों से चाहता हूं? जो मेरे बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे जिनको बाबा कहे मेरे बच्चे, वो कहाँ हैं? कहाँ हैं जिनको बाबा कहे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे? अच्छा, आप लोग मेरे बच्चे में नहीं है? हाँ, नहीं है। जिनके हाथ नीचे है मैं समझू वो नहीं है? हाँ, अरे इसमें तो दो दो हाथ ऊपर करने चाहिए। बाबा इतना प्यार करता है, सिक्की लधे बच्चे कहता है, ढूंढ करके आए हुए बच्चे कहता है, तो कितना हम बच्चों का मान रखता है। एक ही चीज तो कहता है, पवित्रता का व्रत लिया तब हम उसके बच्चे बने। अगर पवित्रता का व्रत नहीं लिया है तो हम उसके बच्चे भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चे ही उसके बच्चे हैं जो पवित्रता की धारणा में है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसी क्या चीज दी है जिससे हम सदा अचल, अडोल और एक रस रह सकते हैं? यह हमारा ब्राह्मण जीवन है और ब्राह्मण जीवन में हमको बाबा ने यूनिवर्सिटी का स्कॉलर बनाया। पढ़ रहे हैं, अपना फॉलोअर बनाया, अपना बच्चा बनाया जो कि आप सबने हाथ खड़े किए। तो क्या पिता को बच्चे की आज्ञा कारिता, बच्चा कितना आज्ञाकारी है, परखने का हक है या नहीं है। शिव बाबा को बच्चों की आज्ञाकारिता परखने का हक है या नहीं है, है? सब कहते हैं। टीचर को अपने बच्चों की अडोल स्थिति को आंकने का हक है या नहीं है। सदा पालना करते रहना और उस पालना के आधार से इतना भरपूर कर देना जो कहीं और आंख ना डूबे, क्या सद्गुरु को ये चेक करने का हक है या नहीं है। तो हमें अचल भी रहना है, अडोल भी रहना है और साथ में एक रस भी रहना है। परीक्षाएं आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन उसके नुक्ते हैं जो बाबा ने हम बच्चों को दिए, और नुक्तों पर जब हम मजबूत रहते हैं तो बाबा हम बच्चों को पास विद ऑनर्स भी करते हैं। पहली बात, अगर अचल रहना है तो नॉलेज फुल होना है। जो आत्मा नॉलेजफुल है, मानो कोई बात आपके सामने आई, आती है, और अगर आपके पास फुल नॉलेज है, सामने जो कुछ है उसके बारे में फुल नॉलेज है, नॉलेजफुल हो, जैसे अभिमन्यु था, चक्रव्यूह में चला गया, उसे 7 चक्रव्यूह का ज्ञान था तो जीत गया। जहां ज्ञान नहीं था वहां मारा गया। इसी रीति से हमारे सामने बातें आएंगी, बातें आती हैं, और बाबा ने बातों को वरदान दिया है कि अंत तक इन्होंने आना है। तो नॉलेज है ना, नॉलेज है ना ये। और क्या बात है, क्यों आती है, किस कारण से आई, उस बात की भी बाबा नॉलेज देता है, दी हुई है। जब नॉलेजफुल स्टेज है तो नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वेल्थ। जब ऐसा है तो व्यक्ति कदापि डरेगा नहीं। पहला अटैक होता है भय के रूप से। अगर भय अटैक करता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जहां भय है वहां मृत्यु है। बाबा ने हमें निर्भय बनाया है, शक्तियों को दो गुण बाबा ने वरदान के रूप से दिए हैं, एक रहम दिल और दूसरा निर्भयता। अगर आप शक्तियों के चित्र देखेंगे उनके नैनों में ये दो चीजें दिखती हैं, रहम भी दिखता है और शक्ति स्वरूप भी दिखता है। तो अचल स्थिति के लिए हम हिले नहीं। उदाहरण मैं आपको देती हूं जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तो कई मिसाल है। रामलीला ग्राउंड दिल्ली में 1973 में मेला किया गया, वो पहला मेला था और उस जैसा मेला दोबारा कहीं नहीं हुआ। उस मेले में ग्राउंड था ना रामलीला ग्राउंड, तो रामलीला ग्राउंड में जब कभी कोई विदेश से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते थे तो उसी ही ग्राउंड में उनका रिसेप्शन रखा जाता था। और जब वो ग्राउंड देते हैं उसमें एक फॉर्म होता है, उसमें लिखत होती है कि सरकार कभी भी ये ग्राउंड आपसे खाली करा सकती है, ले सकती है। अब डेढ़ महीना दादी प्रकाशमणि स्वयं दिल्ली में आके बैठी, दिल्ली पांडव भवन में मेले के निमित्त। मेला तैयार हो गया, थोड़ा सा शेष था। इतने में सरकार का नोटिस आया कि इस ग्राउंड में रशिया का प्रेसिडेंट ब्रेजनेव, उनके लिए वहां पर रिसेप्शन रखना है, आप अपना मेला उठा लो और दूसरी जगह कहीं भी चले जाओ। अब नोटिस आया सरकार का है, मिसेस गांधी थी और ब्रेजनेव रशिया के प्रेसिडेंट, उस समय रशिया से हमें अनाज आता था तो उसको अन्नदाता कहा जाता था, उनका रिसेप्शन रखना है तो बड़ी बात है ना। परंतु दादी ने, दीदी ने, अपने बड़ों ने क्या कहा, नहीं, हमें दूसरे ग्राउंड के बारे में सोचना ही नहीं है। इतना बड़ा सरकार का संदेश था, परंतु बाबा के बच्चों की
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
आया है
काल विनाश खड़ा आगे
संदेश था सरकार का, लेकिन आदरणीय दादी जी और अपने सब वरिष्ठ उन्होंने कुछ नहीं किया, दृढ़ संकल्प किया हमने यहां से ग्राउंड चेंज नहीं करना है। दूसरा ग्राउंड देखना ही नहीं है। सरकार का दूसरा संदेश आया, हम लोगों ने कहा, मैं तब दिल्ली में ही थी, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई लेबर नहीं है, हमने अपने हाथों से किया है और सारा स्टॉल सेट हो गया है। सरकार का संदेश, हम आपको लेबर देंगे, ग्राउंड तैयार करके देंगे, आप शिफ्ट हो जाओ। बाबा जहां दृढ़ता है, अचल अवस्था के लिए नॉलेजफुल स्टेज चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और तीसरा दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता माना बने रहना, छोड़ना नहीं, कायर नहीं बनना, पीठ नहीं दिखाना, भयभीत नहीं होना, उसको कहते दृढ़ता। दादी जी ने खूब योग करवाया, आखिर सर्वशक्तिवान के आगे तो कोई ज्यादा शक्तिवान नहीं है। और कलकत्ता से मां दुर्गा की जो मूर्ति थी वो आ चुकी थी, और दुर्गा की वो मूर्ति स्टॉल में सेट कर दी गई थी। इंदिरा जी ने अपने सेक्रेटरी आर के धवन होते थे, उनको पर्सनली भेजा, रात को भेजा कि जाओ देखो इनके मेले की क्या पोजीशन है। उन्होंने आके देखा, चित्र लगे हुए थे, मां दुर्गा की मूर्ति सेट हो गई थी, भाई बहने काम कर रहे थे, रात को भी काम कर रहे थे। उन्होंने जाके इंदिरा जी को कहा कि इनको छेड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुर्गा माँ की मूर्ति रखी है। ये एक है, अगर मूर्ति स्थापित हो जाती है तो उसको फिर हटाते नहीं है ना। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उनका जो रिसेप्शन है ब्रेजनेव का, वो लाल किला मैदान में कर दिया जाए। तो आखिर दूसरे दिन अखबार में छपा कि सरकार को ब्रह्मा कुमारियों के आगे झुकना पड़ा। अच्छा, अब इसमें इस घटना में क्या क्या चीजें हैं जिससे हमारी स्थितियां चल रहे हैं? एक नॉलेज है, दूसरा दृढ़ संकल्प है, तीसरा दृढ़ता है, चौथा निश्चय है। निश्चय बुद्धि विचयंती, संशय बुद्धि विंशंती। निश्चय और संगठन की शक्ति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को परिवार बना करके देते हैं। बच्चे, तुम अकेले कभी नहीं हो। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? हम ये क्यों भूल जाते हैं? मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता? वो आत्माओं की परिस्थितियों की राहों को चेंज कर सकता है। कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। और ये मिसाल है, आजकल अनुभव भी होता होगा अवश्य, कि परिस्थितियां आई लेकिन अपने निश्चय के बल से भाई बहनों ने उसको जीता। इसी रीति अडोल अवस्था, आप लोगों ने रावण की दरबार में अंगद के पांव को देखा, वो हिला ना सका। अचल रहने के लिए कंटिन्यूअस स्थिरता बनी रहे, उसके लिए मीठे भाई बहनों, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, वो सस्टेनेबिलिटी अर्थात बहुकाल से पढ़ाई का रिकॉर्ड, बहुकाल से मर्यादाओं को पालन करने का रिकॉर्ड, बहुकाल से अनुशासन का रिकॉर्ड। जैसे कोई पिलर लगाते हैं तो उसको बार बार ठोकते हैं, ऐसे ही ये रोज की जो बाबा ने दिनचर्या बना करके हमें दी है, उसको बना करके रखना, ये आपको अचल, कितनी भी हलचल हो अचल बना के रही। हमारा एक चित्र होता था, जिस चित्र में योगी की अवस्था को दिखाते थे, योगी खड़ा है एक प्रभु की याद में और माया चारों ओर से तलवार फेंक रही है, एक तलवार योगी को नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मन उस अचल प्रभु में स्थित है। अगर मन अचल प्रभु में स्थित है तो मेरी अवस्था भी तो अचल होगी ना। बाबा हिलता डुलता तो नहीं है ना, बाबा परेशान तो नहीं होता है ना। अगर बाबा की याद है और वो मैंने बहु काल से अभ्यास रखा है, तब बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था मेरे साथ योग युक्त होने के कारण, सर्वशक्तिमान का साथ होने के कारण सदा अचल बनी रही। अडोल स्थिति भी इसी तरीके से है। अडोल स्थिति तब होते उसको कहेंगे जहां पर आपको रोज नई 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 कोई ना कोई परीक्षाएं आ रही हैं और उसमें आप डोलायमान नहीं हो रहे हो। अचल में एक परिस्थिति आई और आपने उसको संभाला। अडोल में अनेका अनेक परिस्थितियां, अनेका अनेक तत्व विभिन्न प्रकार से अटैक करते रहते हैं लेकिन आप डोलायमान नहीं होते। हमारी दिल्ली के राजकुमार भाई होते थे। राजकुमार जी दादी प्रकाशमणि के स्टूडेंट थे, दादी ने उनको कोर्स कराया था। वो दिल्ली के चीफ इंजीनियर थे देसू के, ये दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, उसके चीफ इंजीनियर थे। एमरजेंसी के दौरान और बड़े ईमानदार ऑफिसर, अपने ऑफिस जाते थे कुर्ता पजामा में। देसू मोस्ट करप्ट उस समय मानी जाती थी, रिश्वतखोरी ये सब गंदी चीजें वहां होती थी। तो राजकुमार भाई तो बाबा के बच्चे थे, नंबर वन स्टूडेंट, कभी भी उन्होंने ये रिश्वत इत्यादि नहीं, ऑनेस्टी। और आप जानते हैं जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, जो व्यक्ति ट्रूथफुल होता है, सच्चा होता है, जो व्यक्ति अपने काम में ठीक होता है, उसको जो गलत तत्व है उसकी टांग खींचते हैं। उन्होंने क्या किया, राजकुमार भाई मना नहीं करते थे लेकिन उन लोगों की कमाई कम होती थी, उन्होंने राजकुमार भाई के ऊपर कई इल्जाम लगाए। नतीजा ये हुआ एमरजेंसी के दौरान राजकुमार भाई को सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिसर के पास पैसा नहीं होता है, बिजनेसमैन के पास पैसा है, ऑफिसर के पास नहीं होता। उनका एक बच्चा इंजीनियरिंग करता था, एक बेटी डॉक्टरेट डॉक्टर बन रही थी, दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा था। कठिनाई पैसा नहीं है, बच्चों की फीस है आदि है। वो राजकुमार भाई गाड़ी में आते थे, धीरे धीरे स्कूटर पे आना शुरू किया, मोपेड पे आना शुरू किया। पांडव भवन दिल्ली में आते थे, मैं वहीं पर थी, और सब उनको कहते थे, सब कहते थे तुम माफी मांग लो। और उनका संबंध बाबा के साथ बहुत अच्छा था, निश्चय बुद्धि। गुलजार दादी के थ्रू बाबा से संदेश लेते थे, तो बाबा भी देखो बच्चे को ट्राई करता है। बाबा कहता था वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। बाबा का जवाब ऐसा आता था, आखिर लोगों ने कहा राजकुमार भाई इतनी आपके साथ हो रही है, सीबीआई ने रेड डाली, अखबार में छपा फर्स्ट पेज पर। मैंने फोन किया राजकुमार भाई को वैसे ही किसी कार्य से, दीदी मेरे से बात नहीं करो क्योंकि मेरे यहां सीबीआई रेड पड़ी हुई है, आपने अखबार नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, लेकिन फर्स्ट पेज पे था। इतनी उनके ऊपर आपदा, कोई उनको कहे ये कर लो, कोई कहे ये कर लो, कोई कहे किसी उससे पूछ लो, ज्योतिषी से पूछ लो, फलाने से पूछ लो आदि। तुम प्रेजेंट से माफी मांग लो, राजकुमार भाई हंसते थे, मैं किस बात की माफी मांगू, किस बात की माफी मांगू। वो उनका इमरजेंसी काल बहुत कठिन काल था और बाबा का उत्तर यही होता था, वेट एंड सी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बाबा ने ये कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वेट एंड सी। नतीजा ये हुआ और उनकी अवस्था इतनी अच्छी। एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा राजकुमार भाई आपकी फाइल का क्या हुआ, कहते मैं फाइल के बारे में क्यों सोचूं, जो होना होगा होती रहेगी, मैं तो ठीक हूं। अवस्था एक क्लास। कारण क्या, इमरजेंसी खत्म हुई और उनको रीइंस्टेट किया गया। पहले एक गाड़ी थी, अब दो दो गाड़ियां हुई, सारा जो लॉस था वो सब उनको वापस मिला। बाबा को एक दिन भी डाउट नहीं किया। जब परिस्थिति आती है प्यारे भाई बहनों, लोग कहते हैं ये कर लो ये कर लो, 15 दिन तुमने वैष्णो देवी जाना छोड़ा ना इसलिए हो रहा है, तुमने ये किया ना इसलिए हो रहा है, लेकिन बाबा मेरा साथी है। 21 साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बाबा बाबा आज सवेरे आप सबको पता लॉस एंजलिस में कितनी भयंकर आग लगी थी और उस आग में धनवानों के, खूब धनवान लोग जो थे उनके घर जो महलों जैसे थे समाप्त हो गए। एक बहन थी बाबा की बच्ची, उसके घर को आंच भी नहीं आई। क्या कारण? कारण बाबा के साथ। देखिए जैसे आप संकल्प करते हैं आप अपने इर्द गिर्द उस प्रकार का ऑरा तैयार करते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। जहां अच्छा ऑरा होता है, पॉजिटिव होता है, पावरफुल होता है, वहां माया वार नहीं कर सकती, उसकी ताकत नहीं है। कहते नहीं भाई इसको कुछ नहीं हम कर सकते, इसका ग्रह बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? याद, अपने चारों ओर हम वो कवच तैयार करें। योग का कवच क्या है? शुभ भावनाओं का कवच क्या है? दुआओं का कवच क्या है? प्राप्तियों का कवच क्या है? इतनी उपलब्धियां हैं, इतना सब कुछ बाबा ने दिया है, इतने खजाने हैं, भरपूरता का कवच है। है कोई जो कहे मुझे बाबा ने कुछ नहीं दिया? सबको भरपूर किया है। तुम एक बार मुझे याद करो मैं दौड़ा आऊंगा। ऐसे मीठे बाबा जब हमारे साथी हैं तो हमारी अवस्था डोलायमान क्यों, क्यों डोलते हैं? बुरा नहीं मानना, वास्तविकता है। तीन हमारे दुश्मन हैं, बाबा ने बताया था, मन का हलचल में होना। और हलचल में इसलिए मन होता है कि पूरा निश्चय नहीं होता है। मन की हलचल दूसरे दुश्मन को लाती है, जिसको बाबा ने कहा था भटकती बुद्धि। बुद्धि भटकेगी। और तीसरा बाबा ने कहा था पुराने संस्कार। ये तीन दुश्मन हैं हमारे। एक बार जब पक्का हो गया तो हम क्यों हलचल में आते हैं? मैं आपको एक और घटना सुनाती हूं। जब हमारी डायमंड जुबली थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम हम लोगों ने पहली बार लिया था, 25,000 भाई बहने उसमें बैठ सकते थे, देश विदेश के भाई बहने आए, हम सब प्यारे बाबा के बच्चे, ईमानदारी से काम करने वाले। जगदीश भाई उस समय थे, ब्रिजमोहन भाई थे, जगदीश भाई हॉल का सारा देख रहे थे, ब्रिजमोहन भाई वीआईपीस का देख रहे थे। तो हॉल में जो वो खेल का स्टेडियम है, जैसे ये है ना, तो ऐसे ही वो बहुत ऊंची छत है, तो उसमें ऐसे तारे लगी हुई हैं, तो वहां भी तारे लगी हुई थी। तो जब प्रेसिडेंट आता है तो वो जाल लगाना पड़ता है, ताकि तारों के ऊपर अगर कबूतर बैठेगा और बीट कर दी तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी ना, इसलिए जाल लगाना था। तो जाल लगाना था, ठीक है, लगाएंगे जाल। परंतु जो वहां का उस समय केयरटेकर कहो, मैनेजर कहो, जो था, उसका मन बेईमान था। वो चाहता था कि उसको थोड़ी रिश्वत दी जाए, थोड़े पैसे दिए जाए और वो कार्य करे। वो हम तो करेंगे नहीं ऐसा काम, हम क्यों देंगे फालतू पैसे। तो भाई साहब ने, जगदीश भाई ने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने इस चीज का लाभ लेकर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को गलत रिपोर्ट भेज दी कि आप प्रेसिडेंट के लिए यहां आना उचित नहीं है, हॉल जो है वो ठीक नहीं है, सिक्योर नहीं है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट को बोल दिया ऐसा ऐसा समाचार आया है और ये हम नहीं जा सकते। प्राइम मिनिस्टर को भी आना था, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ने पार कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने मना कर दिया। हम लोगों ने बहुत भागदौड़ की, एक दिन बीच में शेष था, बहुत भागदौड़ की, परंतु सब हैंड्स अप, एक के बाद एक विकेट जैसे डाउन होते हैं ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ। जितने ऑफिसर्स से हम लोग मिलते थे वो सब ऑफिसर्स ने हैंड्स अप कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। रात को 9 बज गया था, 9:30, निर्वैर भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई, मैं दिल्ली पांडवन के ऑफिस में बैठे हुए हैं, सर्दियों के दिन हैं, विदेशी आ चुके हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग उद्घाटन होना है, सवेरे उद्घाटन होना है, रात की ये बात है। दादी जी ने वहां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बहने जितनी बैठी थी सबको योग में बिठा दिया, दादी खुद योग कराती रही, और नीचे हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे। तो एक ऑफिसर जिससे हम लोग कभी नहीं मिलते थे, वो टॉप का था, क्योंकि औरों से काम हो जाता था तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो आईएएस था और नंबर 1 ऑफिसर था। तो प्रेसिडेंट की युगल से मैंने फोन पर बात की, वो इजी था, उनसे बात की और उनको कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। कहते अच्छा, तो कहती मैं प्रेसिडेंट साहब से बात करूंगी, वो आएंगे, मैं बात करूंगी। रात को 9:30 बज गया, तो 10 बजे करीब मेरी बात हुई है। अब जवाब तो मिला नहीं, प्रोग्राम कैंसिल, ऐसा चिट्ठी आ चुकी है। हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑफिसर था जिससे कभी बात नहीं करते थे, बाबा ने शक्ति भरी और ब्रिजुन भाई ने फोन किया, क्या मैं फोन करता हूं, फोन किया डबल शक्ति भर के कि देखिए एक व्यक्ति के कारण इतनी बड़ी संस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात है कि हमने उसको कुछ दिया नहीं, इस कारण उसने एडवर्स रिपोर्ट भेज दी और प्रोग्राम हमारा कैंसिल, हमारे सारे विदेशी आ चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं, सवेरे ये है और इस समय ये स्थिति है। तो मैंने भी कहा कि अभी मेरी मैडम से बात हुई है, तो उसके आईएएस था ना, उसके दिमाग में बात बैठी। उसने कहा ऐसी बात, भाई साहब ने कहा हाँ ऐसी बात, आपको ये देखना है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने कहा मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा और सवेरे आपको बताऊंगा। हम लोगों ने कहा सवेरे का टाइम तो हमारे लिए पूरे एक वर्ष के बराबर है, आप अभी बता दें। तो कहते आपकी कब बात हुई, मैंने कहा मेरी अभी 10 बजे बात हुई है मैडम से। कहते हैं ठीक है मैं सवेरे ही बात कर सकूंगा। तो आईएएस थे, हम कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे, हमने फ़ोन रख दिया। उनके मन में बात समझ में आ गई थी, फोन रखा और हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जैसे मैं अपने कमरे में प्रवेश करती हूँ तो पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे, इंटरकॉम होते थे ना, तो इंटरकॉम बजा तो मैंने फोन लिया, तो वो सेक्रेटरी लाइन पर थे। कहते हैं आपका प्रोग्राम होगा, प्रेसिडेंट आएंगे। एक बार इतना जोर का झोंका आया। लेकिन प्यारे भाई बहनों, इन सबसे ऊपर कौन है, वो उसको हम नजरअंदाज ना करें। मुझे किसी ने एक सेंटेंस किसी की क्लास का बताया था, वो मुझे बहुत प्रिय लगा है। हम दो भुजाओं वाले के ऊपर विश्वास रखते हैं और जिसकी हजारों भुजाएं हैं उस पर विश्वास नहीं रखते। दो भुजाओं वाले मनुष्य पर विश्वास रखते हैं और हजारों भुजाएं जिसकी हैं उस पर विश्वास नहीं। एक भुजा काम नहीं करे तो दूसरी करेगी ना, हजारों हैं। इसलिए कभी भी अपनी अवस्था को डोलाई मानना करे, पक्का आसन पक्का रहे। तीसरी बात आती एक रस स्थिति। एक रस स्थिति हमारी तब होगी जब हम अन्य चीजों से रस लेना बंद कर देंगे। गुलजार दादी हम लोगों को ये बात सिखाती थी, कई प्रकार के रस होते हैं, नैनों का, कानों का, मुख का, संग का, जिसको हम कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। अगर ये रस फल तैयार तब होता है जब वृक्ष से लेना बंद कर देता है। इसी रीति अगर मैं अभी लेने की इच्छा रखती हूं, कुछ भी पाने की इच्छा रखती हूं, तो मैं एक रस स्थिति में नहीं रह सकती। एक रस स्थिति के लिए मुझे नीरस बनना पड़ेगा। नीरस ये शब्द समझने का है। नीरस का अर्थ ये नहीं है रूखे सूखी पर्सनैलिटी वाले, नीरस का अर्थ है न्यूट्रल। ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। एक रस स्थिति ये नहीं है कि जो मैं हूं मैं वैसी रहूंगी, नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। हम सब कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी के गुलाम बन जाते हैं। उसमें एक बीमारी है फीलिंग। आज हमारी क्लास में कितने बैठे हैं जिनको कभी कोई फीलिंग नहीं आती, मान अपमान ये वो कभी फीलिंग नहीं आती, वो हाथ खड़े करो, कितने थोड़े हैं, कितने थोड़े। अब जब फीलिंग आती है उस समय मेरी अवस्था एक रस है। नेगेटिविटी का संचार होता है, निरर्थकपन का संचार होता है, व्यर्थ का संचार होता है। और अपने को खोखला समझते हैं, इसलिए आज की क्लास से क्या हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हमें अपनी अवस्था को फीलिंग प्रूफ बनाना है, मम्मा? यज्ञ में 350 भाई बहन रहते थे, मम्मा के पास रोज दिन ऐसी बातें जाती थी, मम्मा इसने मुझे ये कहा, मम्मा इसने मुझे ये कह दिया, इसलिए उदास है, इसलिए उदासी चेहरे पे दिखती है, खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, हिम्मत होती नहीं है, ये सब उसके नतीजे हैं। फीलिंग, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में सुनाती हूं। तो मम्मा कहती थी इधर आओ, मुझे बताओ तुम्हें फीलिंग कहां लगी है, मैं देखूं कहां लगी है। तो कहती थी मम्मा यहां बाहर थोड़ी होती, वो तो अंदर की बात है ना। तो मम्मा कहती थी फीलिंग फ्लू की बीमारी है, आप फील करोगी इसको शेयर करोगी, इसको शेयर करोगी, इन्फेक्शन है। नेचुरली आपके अंदर फीलिंग की बीमारी तो आप शेयर करेंगे ना दूसरों से, करेंगे लो फैलेगा, आपको और कमजोर करेगा। जब इन्फेक्शन फैलता है तो इम्यून लेवल डाउन आती है, इम्यून लेवल डाउन आती है तो बीमारी के शिकार और होते हैं। दूसरा, एक बार एक बहन ने कुछ किया होगा तो बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी बाबा के पास गई और बाबा का, बाबा वो जो बहन है ना वो ऐसे ऐसे। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा वो ऐसी है ना, तुम अपना चेहरा क्यों खराब कर रहे हो? जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो फेस पे आता तो है ना, वो ऐसी है, चलो वो ऐसी है, तुम अपने चेहरे को क्यों खराब कर रहे हो? बाबा ने करेक्शन। इसलिए छुई मुई नहीं बनना है, strong. इसने मुझे ये कह दिया, फलाना ऐसे कहता है, फलाना ऐसे कहता है. तो हमारे ब्रजमोहन भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे. भाई साहब कहते थे, अच्छा उसने आपको चोर कहा, आप चोर तो नहीं हो ना. अगले ने आपको चोर बोल दिया, अगले ने आपको झूठा बोल दिया, अगले ने आपको कुछ कुछ बोल दिया, आप वो नहीं हो ना, नहीं हो ना, तो क्यों फील करते हो? और अगर उसने कहा और आप चोर हो तो भी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि आप चोर हो. ठीक है ना? इसलिए फीलिंग ये हमारी अवस्था को बिगाड़ने की बीमारी है. इसमें एक रस स्थिति भी नहीं रहती है, अडोल अवस्था भी नहीं रहती है और अचल भी नहीं रह पाते. तो अभी बताओ क्या मर्जी है भाई आप सबकी, क्या मर्जी है? फीलिंग प्रूफ बनना है या छुई मुई रहना है? अगर छुई मुई रहना है तो हाथ खड़े करो. कोई नहीं, नहीं फीलिंग प्रूफ बनना है पक्का, दोनों हाथ फिर ऊपर हो. पक्का पक्का, सब पीछे वाले, पीछे वाले पक्का, उधर पांडव पक्का. हाँ, इसको छोड़ दो, ये हमको कमजोर बनाते. ठीक है, ओके, यहां मैं समाप्त करती हूं. ओम शांति.
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते. कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते. हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब.